शील और उपवास, ये चार धर्म हैं श्राम। ये पहले अपन ने नहीं समझे थे, अपन इनको पहले लिखे नहीं, जल्दी से पहले समझने। एक चीज आज ये समझने की दान पूजा शील उपवास, ये धबला जी में लिखा हुआ, जय धबला में मैंने सबसे श्रेष्ठ दिया है कि इतना अगर व्यक्ति कर ले श्रावक तो इतना ही उसके लिए उपयोगी है, दान पूजा शील और उपवास, या फिर दान और पूजा, ये ही दो धर्म श्रावक के हैं, इस तरह भी कथन किया है। और या फिर श्रावक छह कर्मों को तो रोज करे, जितना उससे बने उतना करे, देव पूजा, गुरुपास्ती, सास स्वाध्याय, संयम, तप और त्याग, ये षट कर्मानी दिने दिने ये रोज कर, एक श्रावक के लिए ये अनिवार्य है, इनको हम समझेंगे। पर इसके पहले ये सब तब कर सकते हैं जबकि उसकी फैमिली ठीक से मेंटेन हो, तब फिर वो कर पाएगा दान पूजा शील उपवास सब कर पाएगा। अगर फैमिली में डिस्टर्बेंसेज हैं तो कैसे करेगा, तो फैमिली को कैसे मेंटेन करे। पहली चीज है कि फैमिली में डिस्टर्बेंसेस का पहला कारण है कि अगर फैमिली का कोई भी मेंबर बहुत अधिक आकांक्षा रखता है तो उसकी आकांक्षाओं की पूर्ति, हर व्यक्ति अगर आकांक्षा रहेगा, मोर अधिक अधिक चाहेगा, दूसरे से अधिक मिले, बच्चों में हैबिट होती है कि छोटे भैया से बड़े भैया को ज़्यादा मिले, और फिर छोटे भैया की ये होती है कि बड़े भैया को क्यों इतना मिल रहा है, हमको भी इतना मिले। हम ऐसी मानसिकता डेवलप करें फैमिली में कि एक मेंबर दूसरे से कम कंपेयर करके और अधिक और कम की कोई इस तरह की स्थिति पैदा ना होने। तो ये सिखा सकते हैं हम अपनी आवश्यकताओं को कम रख के कि देखो जो हमारे फादर मदर इतनी कम आवश्यकताएं पूरी कर लेते हैं तो बच्चों पर भी उसका असर पड़ेगा, कि ठीक है एक चीज़ कम मिली है तो कोई दिक्कत नहीं, उस एक चीज़ की वजह से विवाद हो सकता है। तो सबसे पहली ज़रूरत है कि परिवार में इच्छाओं पर नियंत्रण हो ताकि विवाद से बचा जाए। इसी को चाहे आप संयम तप और त्याग कह लीजिए, चाहे जो कह लीजिए, सीधी सी है कि अपने ऊपर अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, जो पॉसिबल डिजायर्स हैं वही करेगा, इम्पॉसिबल डिजायर्स बिल्कुल नहीं करेगा, जो असंभव है ऐसी आकांक्षा नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि हमारे आपके कमाई, हमारी इनकम के रिसोर्सेज इतने हैं, और हम अपने स्वप्न देखें कि हमने तो इसलिए शादी करी थी कि हमको इतना इतना वहाँ पर मिलेगा, और अब यहाँ तो इनको दो रोटी कमा पाते हैं ना, हमको ठीक से कपड़े पहनने को ना ही। अगर ये शिकायत लेके बैठ जाएंगे फैमिली डिस्टर्ब। आप धार्मिक कितने भी होंगे लेकिन आप धार्मिक नहीं कहलाएंगे, मंदिर में पूजा पाठ कर लेना अकेला धर्म नहीं है, फैमिली को आपने किस तरह से मेंटेन किया है, इसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि हम परिवार में इच्छाओं पर नियंत्रण करें। फिर दूसरा, कोई छोटी सी भी चीज़ अगर वो विवादास्पद है तो हम उसे टालने की कोशिश करें, उस पर हम कोई भी विचार ना करें, स्थगित करें जहाँ कोई भी विवादास्पद की जाती, क्योंकि दो लोगों के विचार एक से नहीं हो सकते हैं, और फैमिली मेम्बर्स जिन चीज़ों में एक हैं उन चीज़ों में बैठ करके विचार करें, जिन चीज़ों में डिस्प्यूट्स हैं उन चीज़ों पर कभी भी उसको टच ना करें। अगर एक कोई टच करता भी है उसी चीज़ को तो दूसरा वाला उससे विड्रॉ कर ले कि ये इस पर अपन फिर कभी बात करेंगे, इस वाले पॉइंट पे क्या फ़ायदा है, इस पे पॉइंट पे अभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो पॉइंट जो है हमें अब भी पीड़ा में डाल देगा, पूरे घर को पीड़ा में डाल देगा जिस पॉइंट पे हम डिस्प्यूट्स खड़े हो सकते हैं, तो विवाद को टालने का। और तीसरा पॉइंट है कि कहीं ना कहीं से किसी भी तरह समायोजन की प्रक्रिया हम खोजें, हाउ टू एडजस्ट, कैसे मैं एडजस्ट कर लूँ। अपने को एडजस्ट करेंगे तो दूसरा हमें अपने से एडजस्ट करेगा, और हम अगर शुरुआत नहीं करेंगे एडजस्टमेंट की और वेट करेंगे कि दूसरा एडजस्ट करे, तो सबसे पहली शुरुआत हमसे हो। हर व्यक्ति ये सोचे कि एडजस्ट करने की शुरुआत हमें करनी है, झुकना हमें है, अन्यथा एक दूसरे से अकड़ जाएंगे कि आपने ऐसा कह दिया था इसलिए हम भी, जब तक आप झुकेंगे नहीं तब तक नहीं। हमें अगर किसी ने दो बुरी बात भी कह दी है तब भी जो है हम उसके पास जाकर के उससे प्यार से बोलेंगे, अब की बार उसको सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा वो कि वो क्या करेगा। ये जैनिज्म का अनेकांत है और कुछ नहीं, आप जिसको अपने फील्ड में जिएंगे। समायोजन एडजस्टमेंट वही करता है जिसके पास वैचारिक सहिष्णुता है, विवाद को वही टालता है जिसके पास वैचारिक सहिष्णुता है, अनेकांत जिसने जाना है वो व्यक्ति इससे बचेगा। और तीसरी चीज़ है वैचारिक मतभेद, चौथी चीज़ है कि वैचारिक मतभेद होने पर भी मन में कलुषता ना आ पावे, इस बात का ध्यान रखा। वैचारिक मतभेद रहेंगे और कभी कभार वैचारिक मतभेद हो जाने पर और हम अपने मन को खट्टा ना करें, हम अपने मन में कलुषता नहीं आने, हाँ ठीक हो गया, बहुत देर तक ऐसे जूझते रहे विचारों को लेकर के, उसके बाद जोर से हंस पड़े, अरे क्या है इसमें, अपन ने कैसे कौन सी जड़ता छेड़ दी, हटाओ क्या रखा है इसमें, आपके विचार अलग मेरे विचार, ये तय हुआ कि मेरा विचार ये आपका विचार ये, हटाओ जगह, ये तय हो गया कि मेरा विचार ये और इस बारे में आपका विचार ये है, अब लड़ने की क्या आवश्यकता है। लेकिन मैं अपने विचार को आपसे मनवाना चाहूं और आप अपना विचार मेरे से मनवाना चाहना चाहें, ये तो ना हो पाए, पर दोनों के विचार दोनों एक दूसरे को स्वीकार कर लें। इसमें लिखा हुआ है, मैंने जो देखा कि एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने की आदत हो अगर, तो इस तरह की वैचारिक कलुष, वैचारिक मतभेद होने पर भी हम मन को खट्टा नहीं करेंगे, क्योंकि हम दूसरे का विचार का सम्मान कर रहे हैं। तो ये चार चीजें हुई। पांचवी चीज हुई आत्मनियंत्रण। इच्छाओं पर नियंत्रण तो है ही, आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण के लिए तो यह है कि हर कंडीशन में जैसा भी जैसी भी कंडीशन होगी, सबसे पहले मैं अपने को नियंत्रित करूँ। इच्छाएं मेरी बहुत थोड़ी सी थी, इसके बावजूद भी मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, तब क्या करेंगे। मैंने बहुत कोशिश करी कि मतभेद ना हो, फिर भी छोटी सी बात पर डिस्प्यूट खड़ा हो गया, अब क्या करूँ। अब तो कम से कम इतना सब होने के बाद भी आत्मनियंत्रण करो। और अगला पॉइंट है कि धैर्य, सहिष्णुता, सहनशीलता, पेशेंस। इतना सब होने के बाद और फिर आखिरी में जाकर के क्या कहेंगे, सब कुछ हो गया, कर्म सिद्धांत को याद कर लेंगे कि सबके अपने अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता, ये जो घटना घटित हुई है, अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ है, उस सब के पीछे कारण क्या था। कारण यही था कि कोई पुराना पूर्व का मेरा पाप का उदय होगा या सामने वाले का पाप का उदय होगा, हमने इतनी सारी बात कही या हमारी इच्छाओं ने हमें घेर लिया या हम आत्मनियंत्रण भी नहीं कर पाए, तब भी लास्ट में हम कर्म फिलॉसफी सोच के अब क्या करेंगे। अब किसी भी तरह से उस बात को हल्का किया जाए, जिस बात को लेकर के कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया था, तो परस्पर जो है कहते कि जीवन को आसान कैसे बनाए, बहुत मुश्किल हो गया अब जीना, एक एक क्षण भी जीना मुश्किल, जिस क्षण ये लगे कि जीना बहुत मुश्किल हो गया, अब क्या करें। तो जीवन को आसान बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि विचार कर लें कि सबके कर्मों का फल यहाँ सबको मिलता है, तो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, क्यों अपन दूसरे के कर्म में निमित्त बने। अपन विचार सब आ गए इसमें एडजस्टमेंट में, तो सबसे फिर तीन पॉइंट, ये तो इतने पॉइंट हो गए। आत्मनियंत्रण, आत्मनियंत्रण में अपन क्या चीज लेंगे, ये लेंगे जैसे दो चीजें आती हैं जिसको अपन बोलते हैं प्रीजुडिस, है ना, एक क्या कहेंगे, पूर्वाग्रह किसको कहेंगे। तो पूर्वाग्रह से जो व्यक्ति ग्रसित होता है वो आत्मनियंत्रण नहीं करता। जैसे कोई आपके बारे में मैंने धारणा बना ली, अब हम जब भी आप कोई बात करेंगे, हम अपने पूर्व में जो हमने धारणा बना रखी उसके अनुसार सारे रिजल्ट्स निकालेंगे और वैसा ही हम निर्णय लेंगे। अगर हमारे विपरीत जाएगा तो हम अपने को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे और ये कहेंगे आपसे कि आपका तो नेचर ही ऐसा, हमेशा आपके आते ही, लास्ट में जाकर हम सब कुछ झगड़ा थोपने के लिए कि वो हम समझ गए हमारी जिंदगी निकल गई, 10 साल से देख रहे हैं हम, तो आते ही नहीं आपकी, हम कुछ नहीं कर, ये हमने ये लास्ट मोमेंट, ये आत्मनियंत्रण की कमी है कि आपने सब कुछ तो सहन किया, अब आप इतना नियंत्रित नहीं कर पाए अपने ऊपर, आपने इच्छाओं को मारा, आपने एडजस्टमेंट किया और लास्ट में आप इतने पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कि आपने बाद में ये कैसी बात कह दी कि जीवन भर के लिए, और वो चीज खत्म। तो कहते हैं कि खुलापन रहे लेकिन पूर्वाग्रह ना रहे, स्वतंत्रता भी रहे, खुलापन रहे, अपने विचारों को दूसरे से कहें, लेकिन अगर दूसरा उन विचारों को नहीं मानता है तो अपने ऊपर नियंत्रण अंकुश रख लें कि कोई बात नहीं, तो जरूरी नहीं है कि मेरे विचारों से आप सहमत हो, पर आपके विचारों को मैं सम्मान करता हूँ, आपने भी विचार रखा, मैं इस पर जरूर विचार करूंगा, मेरा विचार मैं अपना पोस्टपोन, मैं अपना वापस लेता हूँ, मेरा विचार सही ठीक नहीं, ये आपने जिसमें स्वतंत्रता भी खंडित नहीं हुई है, जिसमें हमने अपनी कोई पुरानी धारणा के मुताबिक निर्णय नहीं लिया है, पर हम स्वतंत्र हैं, दोनों चीजें जिसमें सही। ये मैं लास्ट में कहने वाला था कि इन सबसे हट करके दो पॉइंट और हैं कि खुलापन और आत्मनियंत्रण, ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं कि अपने हम विचारों के लिए स्वतंत्र भी हैं लेकिन दूसरे के विचार अगर हमारे विचार से मिल नहीं खाते हैं तो अपने को नियंत्रित कर लेते हैं, और हम किसी के बारे में कोई किसी एक छोटी सी घटना से उसके पूरे जीवन को नहीं आंकते हैं, ना उसके बारे में कोई निर्णय लेते हैं कि ये ऐसा ही है, क्योंकि व्यक्ति हमेशा बदलता रहता है, ये हमारा आत्मनियंत्रण। अब जो व्यक्ति पूर्वाग्रह से युक्त होता है वो व्यक्ति हिंसक होता है, ये एक पॉइंट मैंने दिया कि हम उस समय हिंसा से नहीं बच सकते अगर हम पूर्वाग्रह से, क्योंकि हम उसको कुछ ना कुछ कहे बिना नहीं रहेंगे, हमें जिसके बारे में जो धारणा बना ली है उससे हम कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए कभी किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनाना, अच्छी या बुरी बनाना हो तो अच्छी बना लेना ताकि कभी बुरी भावना आए तो उसको वो, लेकिन गलत धारणा कभी किसी के बारे में, ये आप नहीं। इतनी चीजें ये हो गई, ये तो वैचारिक हुआ। अब जो व्यक्ति इतना विचारों में समृद्ध होगा वो दान पूजा शील उपवास, फिर सब आसानी से सारे छह कर्म भी वो एडजस्ट कर लेगा, उसको आग्रह नहीं रहेगा कि छह ही होना चाहिए, वो एक में ही छह को पूरा कर लेगा। अपन अभी चर्चा करेंगे छह कर्मों की, आप देखेंगे तो एक ही अपन ने पूरा ढंग से कर लिया अगर, तो उसमें छह कर्म हो गए। एक चीज और जो इसमें मुझे कहनी है, डेली उसमें व्यक्ति इतनी चीजें तो शामिल करे फैमिली में शुरू से, या अभी शुरुआत मैंने शुरू से मतलब जिस दिन भी शुरुआत करे तो वो अपने उसमें मैत्री भाव डाले, जिसको अपन मेरी भावना कहेंगे मैत्री भाव, वो अपने बच्चों के साथ बैठ करके अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठ करके धर्म की दो बातें कर सके, दो लाइन धर्म की पढ़ सके, हम अपने घर के हम ऐसा वातावरण बनाएं कि घर के सब लोग हमारे एक साथ बैठ के धर्म की दो बातें, और बाकी डिस्कशन तो करते हैं सब, जैसे अपन को घर मैंने मेंटेन करना है तो उसके सब लोग बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो उसी तरह सब लोग बैठ करके धर्म के बारे में दो लाइनें करें, ये सबके लिए हो गया। फिर स्पेशली बच्चों के, जो हमारी जनरेशन है, एक आपको ताजुब होगा कि एक व्यक्ति ललितपुर में मेरा कमंडल लेके आहार के बाद आए, तो बढ़िया आदमी के उससे मालूम पड़ जाता है कि आदमी पढ़ा लिखा होगा, उनके अपने आहार देने के ढंग से। मैंने उनसे पूछा कि आपने क्या किया एजुकेशन, तो बोले कि मैंने बी ए। मैंने कहा आजकल क्या करना है, बोले किराने की दुकान, परचून की दुकान, किराने की दुकान, आपने बी किया, बोले हाँ सर्विस भी करी लेकिन माँ का 16 जो है वापस ले आए। मैंने कहा अजीब सी पहली बुझा रहे हैं आप, सही से बताइए क्या। बोले कुछ नहीं, मैंने बी करा, बी करने के बाद 3 साल मैंने सर्विस करी, और उस सर्विस के दौरान क्योंकि मेरे संस्कार माँ के 16 के थे, मैंने उनका हमेशा विरोध किया 16 के संस्कारों का जब तक घर में रहा, लेकिन उनकी जिद थी कि पैर धो के आना पड़ेगा, हाथ धो के आना पड़ेगा, अपनी थाली उठा के लाना पड़ेगी, जमाना पड़ेगी, पानी रख के बैठना पड़ेगा, सब कुछ, और बड़े साफ सफाई से वो मुझे खाना परोसती थी। अब वो हैबिट 20 साल की, अब जब मैं 3 साल प्यून मेरा खाना बनाता था तो मुझे बड़ी घिन आने लगी, मेरे से खा ही नहीं जाता, तो मैंने उठाई सर्विस और छोड़ झाड़ के बोले अब जो है परचून की दुकान है, शांति से कमाता हूँ, माँ के हाथ का बना शुद्ध भोजन करता हूँ, मुझे बड़ी शांति। वो एक छोटी सी चीज उसको वापस ले आई इतने सारे संसार के बीच में से। मुझे लगता है कि ये ठीक है, ये अलग है कि उस व्यक्ति का अपना योग्यता रही होगी, हर एक के साथ ऐसा घटित नहीं हो सकता, पर फिर भी हमारा कर्तव्य क्या है कि कोई ना कोई इम्पैक्ट हम अपने बच्चे के अंदर ये डाल दें कि माँ हमसे हर शाम को बैठ के जिद करके हमें 5 मिनट कोई धर्म की बात सुनाती थी, हमारे 20 बरस का, 20 बरस का भी बेटा नहीं, अगर 80 साल की माँ होगी तो 60 बरस का बेटा भी बेटा ही कहलाएगा, भले ही उसका भी उसके बेटे हो गए लेकिन कह रहा है वो बेटे। तो अपने बेटे को बड़े होने, अगर आप पहले दिन से, जैसे मैंने कहा था कि एक दिन का भी हुआ है तो माँ अपने बाजू में लेटा है और शाम को मेरी भावना पड़ रही है, एक दिन के बेटे के साथ, 2 दिन 3 दिन रोज वो मेरी भावना पड़ रही है, रोज हर शाम को, तो एक एक दिन पढ़ता जाएगा, बेटा बड़ा हो जाएगा लेकिन उसके अंदर इंप्रेशन रोज पड़ रहा है, जब वो समझदार हो जाएगा तब भी वो अपने आप आके बैठ जाएगा कि टाइम हो गया 7 बजे, माँ मुझे 2 लाइन सुनाएगी, भले वही किसी की पुरानी मैत्री भाव जगत में मेरा रोज वही, लेकिन सुनाएगी, मैं बैठूंगा, वो उसके जीवन के बहुत माने पवित्र क्षण मान के चलेगा वो 24 घंटे में, कि वो नहीं छूटना चाहिए कि मुझे माँ के साथ बैठ के, और ये चीज ये अपन लोग नहीं कर रहे, इसका इम्प्रेशन मेरे अपने अनुभव में तो मुझे है, मेरे अंदर जो इम्प्रेशन है माँ का वो आज भी ज्यों का क्यों बना हुआ है, क्योंकि 16 वर्ष की उम्र तक, जबकि मैं 11th कंप्लीट करके और उसमें गया था, तब तक जो है माँ ने मुझे रात सोने से पहले और कोई ना कोई पुराण बांध के सुना 16 वर्ष तक, और बचपन से लेकर के 16 वर्ष तक बहुत इम्पैक्ट होता 16 वर्ष मुझे ख्याल वाल, लेकिन अब जो भी पुराण पढ़ता हूँ सारे पुराण मुझे जैसे मुझे मालूम, सारे नाटक जो सुंदरी मैना सुंदरी फलाना दुनिया भर के सब मालूम, मंगत राय की मेरी मंगत राय की 12 भावना आप आश्चर्य करेंगे मैंने कभी पढ़ी नहीं, लेकिन आचार्य श्री ने कहा कि चले पहले ही दिन मंगल राय की भावना पढ़े, तो सब लोग पढ़ने लगे, अरे मेरे मुझे आती है, मैंने भी सबके साथ में पूरी पढ़ ली, तो लोगों ने कहा आपने पहले पढ़ी थी? मैंने कहा पहले नहीं पढ़ी थी, मुझे याद आ रहा है कि माँ जो है सुबह से जब झाड़ू लगाती थी वो मैं सोता रहता था और पड़े पड़े जो है उनकी आवाज़ सुनता रहता था, तो वो गाती थी मंगल गाय की, कहाँ गए चक्री जन जीता भरतखंड सारा, वो इम्प्रेशन मेरे ऊपर पड़ा। तो मुझे लगा कि ये चीज़ आज अपने में से निल हो गई अपनी फैमिली में। तो फिर अपन बाद में अपने बच्चों की शिकायत कर बैठते हैं, जिस चाय के सामने शिकायत कि मेरे बच्चे जो है मेरे हाथ से निकल गए, और बहुत पीड़ा होती व्यक्ति को, क्या करे। तो उसको इम्प्रेशन अगर वो पहले दिन से, जो कि वो एक दिन का अभी पैदा हुआ है और उसे शाम को माँ को लेटे लेटे वहीं पर और मेरी भावना तो पटनी वो बेटे को सुना, उसका इम्प्रेशन प्राप्त कर, ये चीज़ फेफड़ी में शामिल की जा सकती है। और तो हैं आप लेट लेकिन बच्चे आपके कंट्रोल में हैं, शुरू से कर सकते हैं। मैंने जो लोग नए हैं जो अपनी देखिए दोनों मार्ग तो मार्ग हैं, अगर संसार का मार्ग है, संसार का मार्ग नहीं कहेंगे उसको, गृहस्थ का मार्ग और मुनि का मार्ग। गृहस्थ मार्ग भी मैं छोटा नहीं समझता हूँ, बहुत जिम्मेदारी का है, 25 साल का हो गया और वो तय करता है कि मैं गृहस्थ बनूंगा, तो गृहस्थ बनूंगा तो कैसा करूँगा। जैसे हम सोचते हैं कि साधु तो बनोगे लेकिन कुछ अकल वकल है बनने की नहीं, तो ऐसे ही हम सोचेंगे कि अकल वकल है शादी वादी कर रहे हो, अकल है कुछ की नहीं, फैमिली मेंटेन करना पड़ेगी बाबा, कैसी थोड़ी कि शादी कर ली हो गया, नहीं पहले सीखो कि कैसे मैनेज करोगे, कैसे अपनी जनरेशन को धर्म दोगे, कैसे स्वयं धर्म करोगे, ये अगर थोड़ी सी नॉलेज हो तो फिर देखिएगा उसमें से कैसे नहीं होता। गृहस्थी जिस व्यक्ति, मैं तो सोचता हूँ जिस व्यक्ति की घर जितना पवित्र है उतना ही वो मंदिर में धर्म ध्यान कर सकेगा, तो घर में भी फ्रूट्स हैं तो फिर वो मंदिर में करेगा भी और उतना आनंद नहीं देगा। ये इतनी चीज़ें अगर अपन करें कर सकते हैं, इसमें से मैं कहता हूँ 1% भी करिए चलिए, जिसमें इतना भी इंप्रेशन बना रहा है कि अपने को ये करना था नहीं करा, ये कर लेते तो बड़ा अच्छा रहता, तो सेटिस्फेक्शन होगा ये। अब फिर इसके बाद अपन समझें कि दान पूजा शील और उपवास जो हमारे मेन है, जो हर श्रावक को, बाकी भले ही ना करे, प्रतिमा ना ले पाए श्रावक, अपन ने 11 प्रतिमा पढ़नी है नैस्टिक श्रावक की, पाक्षिक भी पढ़ लिया है कि पाक्षिक श्रावक क्या है, जो अपने धर्म का पक्ष लेता है, सात व्यसन का त्याग करता है, रात्रि भोजन का त्याग करता है, देव दर्शन, इतना सामान्य सा नियम है। लेकिन उसके साथ में अगर वो ये सब भी नहीं करता तो इतना तो आराम से कर सकता है, वो अपने जो अपना संचित धन है या अपने पॉकेट के लिए जो मिला है उसमें से डोनेट कर सकता है। दान नहीं कर पाता है तो दान देने का रोज मन बना सकता है, आज मैंने किसी के लिए क्या दिया जो मेरे पास अतिरिक्त था, सिर्फ दान देने का भाव बनाना। आज मैंने किसी के लिए एक प्रेम से शब्द बोला है क्या, आज मैंने कोई ज्ञान की बात किसी को दी है क्या, आज मैंने अपने आचरण से किसी को कोई शिक्षा दी है क्या, पैसा वैसा छोड़िए, आज किसी को कोई चीज दी है, ये तो अपन बहुत जल्दी देख लेते हैं, आज हमने अपनी भावनाएं दूसरे को दी है क्या पवित्र, ये दान। आज कोई हमारे निकट आके बैठा था तो हमने उसको निश्चिंत करा है कि नहीं, कि मेरी तरफ से निश्चिंत रहना, अभयदान। अभयदान की बहुत बड़ी परिभाषा नहीं है कि 11,000 रुपया दे के एक कमरा बनवाओ तो अभयदान हो गया, नहीं, मेरे पास आकर के मेरे अपने मित्र को मैंने निश्चिंतता दी है कि नहीं, मैंने अपने निकट अपने पड़ोसी से ये कहा है कि नहीं कि तुम निश्चिंत रहना, तुम मेरे पड़ोस में हो, मेरे से कोई तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, अभयदान। ये जो है, या साधर्मी जो है, क्योंकि साधर्मी भी मोक्ष मार्गी तो है, जो सम्यक दृष्टि है, जघन भले ही है, मुनि महाराज जी जब मिलेंगे तब उनके लिए ठहराने के लिए जगह की व्यवस्था करेंगे, वो आवास दान वो बड़ा है दान, वो ठीक है, उनको औषधि देंगे, उनको आहार भी देंगे और उनको उपकरण भी देंगे, किताबें देंगे, लेकिन जो मध्यम है या जो जघन है जिनसे हमें रोज अपने निभाना है, जो हमारे अपने अपने जैसे धर्म का पालन करते, उनके साथ हमने दान की कोई प्रक्रिया दिन भर में करी के नहीं, सीधा सा ये दान का ऐसा आरती, ये अपन आराम से कर सकते हैं फैमिली में रह करके, इतना तो अपने फैमिली के लोग भी तो साधारणी हैं, उनके साथ बैठ करके उनको हमने आज क्या दिया, ये दान है। फिर ये सामान्य रूप से आहार दान, औषध दान, अभय दान और उपकरण दान, ये अलौकिक दान कहलाते हैं। इसमें हमें पात्र का और अपात्र का विवेक रखना है। पात्र वो है जो मोक्ष मार्गी है, पूर्ण रूप से मोक्ष मार्गी मुनि होगा, आंशिक रूप से मोक्ष मार्गी आरिका मुनि आरिका क्षुल्लक और अधिक जघन रूप से कौन होगा, तो श्रावक, जो कि धर्म का पालन करता है। तो इन तीनों को हम जब विचार करके दान देते हैं तो वो दान कहलाएगा अलौकिक दान, क्योंकि वो परमार्थ को साध रहा है। और जो हमें सामान्य रूप से लोगों के साथ करना है तो उसमें आता है समदत्ती, अपने समान जो है, अपने समान कौन है, अपना बेटा, पिता देगा अपने बेटे को, बेटा देगा अपने पिता को, अपने भाइयों को, अपने पूरी फैमिली को, ये समदत्ति कहलाती है। एक्चुअली समदत्ति का अर्थ है अपने समान व्यक्ति को अपना सब कुछ दे देना। तो पिता अंत में अपने सारे संस्कार, अपनी संपत्ति अपने बेटे को देता है। और दूसरी स्थिति तब बनती है जबकि जबकि वो अपनी बिटिया को देता है कन्यादान, और कन्यादान के साथ भी समदत्ति होती है कि आप हमारे जैसे हो गए। समधी, धी मतलब बुद्धि, अधिकार तो था बुद्धि, समधी मतलब समान भी वाले हो गए, अब हम लोग संबंधित हो गए, अब हम एक दूसरे को अपना आदान प्रदान करेंगे, ये समदत्ति। तीसरा होता करुणादान, पहला हो गया समदत्ति, फिर कन्यादान, फिर करुणादान। करुणादान में सब आता है कि रास्ते चले जा रहे थे, किसी व्यक्ति को गरीब शरीर का देखा, थोड़ा मन पीड़ित हुआ, क्या दे दें इसको, कुछ थोड़ा सा दे दें, कुछ नहीं दे पाए तो वहीं खड़े होकर के इसको कितनी पीड़ा है, मैं क्या कर सकता हूँ, इतना भी आपके मन में आ गया तो आपने बहुत कुछ दे दिया, आपके अंदर करुणा आ गई और आपने करुणावश उसका कुछ भी उपकार करने का मन बना लिया, आपका करना था, इतना तो आसान है, गृहस्थ इतना तो कर ही सकता है, रोज कर सकता है ये दान की प्रक्रिया, अलौकिक भी और लौकिक भी दोनों तरह। फिर देखिएगा पूजा, पूजा में जो है पूजा का अर्थ सीधा सीधा होता है, तीन तरह से होती है, मन से, वचन से और शरीर से। तो मन से पूजा तो कहते हैं जो पूज्य पुरुष हैं उनके गुणों में अनुराग होना, ये उनकी मन से पूजा, उनकी स्मरण करके उनके गुणों के प्रति हम उनका अनुराग, हमारा गुणों में अनुराग है। और हम जब वाणी से प्रशंसा करने लगते हैं उनकी, चार लोगों की बैठ के, तो वचन से पूजा हो गई। और जब हम शीश झुकाते हैं या कि द्रव्य इत्यादि ले जा करके और समर्पित करते हैं, वो सब शरीर से पूजा। अब हम इनमें से चॉइस कर लें कि रोज रोज हम कौन सी करेंगे, मन से पूजा तो रोज कर लें, वचन से पूजा रोज कर लेंगे, बैठेंगे और कहेंगे कि अनंत का स्वरूप ये है, वो हमारे भगवान है, सिद्ध का स्वरूप ये हमारे भगवान है, उनके गुणों के प्रति हमें अनुराग है, किसी से कह भी नहीं पाएंगे तो स्तुति कर लेंगे बैठे बैठे। अब रहा ये कि शरीर से तो लिमिटेशन है, शरीर से लिमिटेशन ये है कि फैमिली को पहले मैनेज करना है, फिर उसके बाद अपने को समय निकाल करके फिर जाकर के मंदिर में पूजा विस्तारना है। नहीं तो ऐसा हुआ कि बेटा तो जो है भूखा बैठा रहा और कॉलेज जाने के लिए, और अपन आ गए और एक घंटे अपन ने पूजा विस्तार ली, अब जब घर वापस लौटे तो वो जब तक चला गया था, अब शाम को लौटेगा तो उसका आपके प्रति कोई डिवोशन नहीं रहेगा, वो कहेगा ठीक है आप भी जब कभी कहीं से वापस लौटेंगे अपना खाना वाना वो खा के बैठा होगा, आपको उसने बचाया भी नहीं, जैसा अपन देंगे वैसा वो वापस अपन को रिटर्न करेगा, तो रिस्क खड़े हो जाएंगे। तो शरीर से जो पूजा की प्रक्रिया है वो श्रावक को करनी तो चाहिए, लेकिन उसकी गृहस्थी को पूरा मेंटेन करके फिर उसके बाद, इसलिए मैंने इसको इस तरह से रखा है कि पूजा तो करना है लेकिन पूजा का एक हफ्ते में एक दिन तो करेंगे हम, रोज ना कर पाएंगे। बड़े हो जाते हैं, जब बच्चे बड़े हो गए और अपन भी बड़े हो गए तब तो रोज कर सकते हैं, आप वो अपने संभल गए, लेकिन शुरू से आप पूजा का नियम नहीं ले सकते, तो क्या फिर हम पूजा नहीं करेंगे? एक जिसने बिटिया ने कल शादी करी है और अब अगले दिन वो पूजा करेगी क्या? नहीं कर पाएगी, तो क्या पूजा उसकी नहीं होगी क्या? श्रावक कहते हो सकती, वो 10 मिनट बैठ करके अपने वहीं पर और उसने विचार कर लिया, अपने गुणों में अनुराग कर लिया है, सहन सिद्ध के तो उसकी पूजा की प्रक्रिया होगी, उसने वचन से कर ली, शरीर से मंदिर जाके हाथ जोड़ करके कि भाई टाइम नहीं है मेरे पास, इतने पूजा कर सकते कि हाथ जोड़ के मंदिर पास में है तो जल्दी से आ गए 5 मिनट, अब आधे घंटे की पूजा अभी ना हो पाएगी, संडे को जब फुर्सत मिलेगी तो जरूर से करें। तो ये दान पूजा, फिर शील, शील का सीधा सा अर्थ है अपने स्वभाव में विकृति नहीं आने देना। हमारा स्वभाव क्या है? पवित्र, पवित्रता हमारा स्वभाव है और विकार हमारा विभाव है, वो हमारी कमजोरी है, वो हमारे शील से विचलित होना, शील का अर्थ होता है स्वभाव, और स्वभाव है हमारी पवित्रता। तो हम कुछ देर के लिए अपने मन को सबके प्रति पवित्र भी रखें, ये जो है पवित्रता, आराम से पालन हो सकती, शील का पालन आराम से हो सकता, जिसने विवाह कर लिया है वो अपने जिससे विवाह किया है उसके अलावा बाकी सबके प्रति उसके मन में पवित्रता है, और उसके जिससे विवाह किया है तो उसके प्रति भी अपवित्रता कभी नहीं रहती, पवित्रता ही रहेगी, तब तो हमने उसको अनुव्रत कहा है, ब्रह्मचर्य अनुव्रत कहा है, जबकि संबंध होने के बाद भी। तो ये शील है, इसी का नाम शील है, ये तो अपन आराम से पालन करते हैं। फिर उपवास, उपवास के दो अर्थ, उसमें लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति आपके 108 बार नमोकार मंत्र करता है वो एक उपास करता है, एक परिभाषा उपास की ये है। दूसरा कहते हैं जो अपनी चारों कषायों को जीत लेता है वो उपास करता है, बाकी तो चारों प्रकार के आहार को छोड़ देना लंघन है, चारों प्रकार के आहार को छोड़ करके जो अपनी चारों कषायों को जीत ले सो सच्चा उपास है। दोनों चीजें हो गई, हम देख रहे हैं कि फैमिली में हमारे उपास करने से पूरी फैमिली गड़बड़ा रही है और हम तो अपने को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन बाकी लोग सोच रहे हैं हमारे हमारे प्रति चिंतित हैं, वो हमें उनकी चिंता दूर करनी है, या कि वे मोह वश जो है, हमारे राग वश जो है, हमें उपवास न करने देंगे, हो सकता है। और हमें करना है, रोज रोज उपवास करने हैं, तो हम नमोकार की 108 की जाप तो कर ही सकते हैं, हमारा उपवास हो गया, क्योंकि रोज उपवास कैसे करेगा श्रावक, इसमें लिखा है कि रोज ये चार धर्म है श्रावक के, उपवास भी करे रोज, तो कौन सा उपास, कषायों को जीतने का उपास, 108 बार नमोकार तो पढ़ेंगे ये उपास, और जैसे ही मौका मिलेगा तो हम भोजन भी परित्याग कर देंगे और भोजन में लिमिटेशन कर लेंगे, अपने आत्मा के निकट रहने की प्रक्रिया करेंगे, ये उपास तो आसानी से। और दो चीजें जो मैंने टच करी थी कि मोहवश जो है लोग हमें उपास करने से रोक सकते हैं, तो उन्हें निर्मोही बनाए, या हमारी अपनी उसकी वजह से कि ये मेंटेन कैसे कर पाएंगे, नहीं सहन हो पाएगा इनसे उपास, तो मना करते हैं लोग, तो हम उनको समझाएं कि नहीं हम कर लेंगे, आप निश्चिंत रहें, और अगर हम ना कर पाएंगे शाम तक तो हम ग्रहण कर लेंगे, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, और शाम तक हमने अपने खुश रह के दिखा दिया कि नहीं हम तो बढ़िया से हैं, कोई परेशानी नहीं, तो अगला वाला भी फैमिली मेंबर है, वो फैमिली मेंबर आपकी चिंता ना करेगा तो आपको तकलीफ, वो ज़्यादा चिंता कर रहा है तो तकलीफ। ये बहुत मुश्किल होती है लोगों को, ये अगर चिंता नहीं करें, हम चाहे उपवास करते रहें, कोई कर रहे हैं, हमें कोई पूछते नहीं है, और अगर चाहते उपवास करें और कोई कहे भैया मत करो, तो कहेंगे लोग हमें करने नहीं देते, दोनों कंडीशन, ये समझदारी है। हम अपने आसपास, हम अपने जो हमने अपने आसपास बना के रखा है उसका भी हम ध्यान रखेंगे, तब हम अपना धर्म साथ पाएंगे। पर मैं इसका आशय ये नहीं समझना कि हम दूसरे को ही देखते रहेंगे और अपना कुछ भी ना करेंगे, ऐसा भी नहीं, हम दूसरे को इस तरह से टैकल करेंगे, इस तरह उसको विश्वस्त कर देंगे कि अपना भी शांति से कर लेंगे और उसका मन भी खराब ना हो पाएगा, ये हमारा कर्तव्य। ये हो गया दान पूजा अशील और उपवास, इसी में षट कर्म में भी ये सारी चीजें आ जाती हैं। एक बार अपन 6 कर्म भी समझ लें जो रोज करने के हैं, देव पूजा वो पूजा में आती है, गुरुपास्ती गुरु का स्मरण भी गुरुपास्ती है, उसमें लिखा है गुरु की उपासना का अर्थ है गुरु की आज्ञा का पालन करना, ये उनकी उपासना है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, उन्हें जिसमें ठीक लगता है वो करना, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, यही उनकी उपासना है। उपासना का अर्थ ये नहीं है कि हम तो लिख रहे हैं और आप लगाओ इसके भी लगाओ, आओ सब जने पूजा करें, 2-3 घंटा भर पूजा आएगी, लिखा है उसमें गुरुपास्ती, लिखा हुआ तो पूजा कर भी, अब हम लिख रहे थे हमारी पढ़ाई राई सब ठप, आपकी पूजा हम अपनी स्वीकार करें, ये नहीं है, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, उन्हें जिसमें ठीक लगता है, उनका जिसमें डिस्टर्ब नहीं होता वो उनके अनुकूल चलना, ये जो है गुरुपास्ती। और दूसरा अर्थ ये भी है कि गुरु के निकट जा कर के बैठना और उन्हें वाच करना, सिर्फ वाच करना कि मेरे जैसा आदमी है, खाता पीता है, उठता बैठता है, आता जाता है, सब मेरे जैसा कुछ, लेकिन कुछ मामलों में अलग है, किन मामलों में अलग है जरा देखूंगा बैठ, ये इस चीज को ऐसा विचार करता है, मैं तो इस चीज का ऐसा सोचता हूँ, मुझे ऐसा नहीं सोचता, ये शिक्षा मिलेगी। अगर निकट बैठेंगे तो उनसे हमें कौन सी चीज मिलेगी, सम्यक दर्शन और ज्ञान और चारित्र, ये तीनों चीजों की हमें शिक्षा मिलेगी, सिर्फ निकट चुपचाप बैठने मात्र से, कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं, वो कुछ नहीं कह रहे, ये मैंने 1-2 दिन में किया है, 3 साल किया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल अनुभव की चीज है। आचार्य जी के पास गया हूँ तो बोला तो हुई नहीं, बस दूर जाकर के वहाँ बैठे, उनको देख, उनको डिस्टर्ब ना हो, ऐसा नहीं कि यहीं जाकर के बैठ गए तो उनको डिस्टर्ब हो गए, इतनी दूर कि उन्होंने जब वो आँख उठा के अपना काम करके निपट जाए तब देखें तो देखेंगे, तो वहाँ बैठे और उनको देख रहे, उनके पास लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बड़ा आनंद आता था, लेकिन ये प्रक्रिया जो है एकदम पॉसिबल नहीं है, कठिन प्रक्रिया है ये करी। उसके बाद फिर 3 साल उनके अत्यंत निकट बैठा और उनको सिर्फ सुनता था, मैंने अपना कम पढ़ा शुरू के दिनों में, जो जितना उन्हें पढ़ा दिया उतना पढ़ा, और मैं देखता था कि वो किस प्रश्न का जवाब, आज आपके प्रश्नों का जवाब दे लेता हूँ तो किसकी कृपा से, मुझे कोई प्रश्न कठिन नहीं लगता, क्यों, क्योंकि मैं उनके पास बैठा हूँ 3 बरस तक, हर तरह का प्रश्न उत्तर लोगों ने किया है, मैंने कभी उनके बीच में बोला नहीं कि ये ऐसा नहीं ऐसा, मुझे मालूम है कि इसमें ऐसा, लेकिन मैं सुनूं कि वो क्या कहते हैं इसके, क्या वो बुद्धू हैं कि मुझे उनको सलाह देनी पड़े या कि मुझे बीच में बोलना पड़े, नहीं मैं चुप। 3 साल तक ये प्रक्रिया, तो मुझे लगा कि वाकई में ठीक लगता है गुरुपास्ती, अब भी मेरे पास नहीं भी है तब भी मैं चाहूँ तो स्मरण करके उनके अत्यंत निकट अपने को बैठा हुआ पाता हूँ, ये गुरुपास्ती है, रोज कर सकते हैं, वे हमसे बहुत दूर भी हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला, लेकिन मैं उनके निकट बैठा हूँ और उनको सुन रहा हूँ कि वे क्या कहते हैं, या कि जब हमसे कोई चीज़ मुश्किल पड़ती है तो हम छोड़ देते हैं उनके ऊपर, हमसे नहीं आते। आप जानो आपके पास होते तो हम आपसे फट से पूछ लेते, आप बताओ आपकी क्या करनी है। तो मुझे फौरन उत्तर मिल जाता है कि ये करो। कैसे मिलता है वो? गुरु पास्ती का मतलब ये है कि हमने उनसे लेना शुरू कर दिया है, हम शिष्य बन गए हैं। आप शिष्य बने बिना हाथ फैलाए बैठे रहो, माथा पटकते रहो तो कुछ नहीं मिलने वाला। आपके भीतर अगर शिष्यत्व प्रकट हो गया है तो वहां से तो निरंतर आपके ऊपर बरस ही रहा है, आपको अलग से हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये गुरु पास्ती ऐसा अर्थ अपन उसका है। शास्त्र स्वाध्याय का तो पांच प्रकार से स्वाध्याय कर सकते हैं, अपन रोज कर सकते हैं। वैसे तो लिखा है कि गुरु के मुख से सुनना, ये वाचना नाम का स्वाध्याय है, इनको अपन लिख लेंगे अभी तो सिर्फ सुनते हैं। गुरु के मुख से सुनना ये वाचना, या कि सेल्फ पढ़ना ये भी वाचना है, तो अपन पढ़ सकते हैं। शास्त्र उठा करके पढ़ सकते हैं दो लाइनें, इसमें तो कोई कुछ नहीं हमारा कहेगा। हमें टाइम मिला, हमने सोने से पहले या कि जागे और सबसे पहले हमने दो लाइन शास्त्र की पढ़ ली अपने जीवन के लिए वाचना। प्रश्न जब कोई हमसे बुद्धिमान नजर आया तो हमने उससे दो बातें पूछ ली, जैसे हम दुनिया की दो बातें पूछते ऐसे ये पूछ लेंगे कि भाई ये 10 प्राण क्या चीज़ होती है। हम भूल जाते हैं, क्या दिक्कत है, कंफर्म भी हो गया और डिस्कशन भी हो गया। तो प्रश्न नाम का स्वाध्याय हो गया। अनुप्रेक्षा, हमने जो पूछा था उसको भूल ना जाए इसलिए बार बार चिंतन करते रहें, ये अनुप्रेक्षा हो गई। मोहर मोहर चिंतन अनुप्रेक्षा, बार बार उसी चीज़ का विचार करना, फिर बार बार चिंतन भी कर लेते हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब तो घोट लेंगे, अब तो याद ही कर लेंगे, नहीं तो भूल जाते हैं। तो आमना है, अब उस पाठ को जो पढ़ा है उसको याद कर लेना, स्मृति में कंठस्थ कर लेना आमना है। फिर उसके बाद धर्मोपदेश, दूसरे को भी हम धर्म की चार बातें बता सकें, ये धर्मोपदेश। लेकिन धर्मोपदेश की कंडीशन है कि सामने वाला अगर इंटरेस्टेड हो, सामने वाला आपसे तीन दफे पूछे तब एक बार बताना, अन्यथा आपके पढ़े हुए का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, आपका मन भी संश्लेषित हो जाएगा। बिना पूछे आप दूसरे को समझाने लगे, कहा हम बताते आपको हमें ये चीज मालूम, वो उसको पढ़ते भी नहीं, आप जबरदस्ती उसको सुना रहे हैं। धर्मोपदेश तो कई लोगों की हैबिट रहती, नहीं सुनना चाह रहा है भाई। जैसे अब कई बार शुरू होता है ना, अपन धर्मोपदेश करना शुरू करते हैं और लग रहा है फिर से लगने लगता है, नहीं अब समझ में नहीं आ रहा, कैपेसिटी होती 45 मिनट के बाद पीरियड ज़्यादा बड़ा हो तो फिर आदमी कितना भी समझदार हो तो समझ में नहीं आएगा, तो ड्रॉप। जो समझना चाह रहा है उसको हम देंगे, और धर्मोपदेश भी हम रोज दे सकते हैं। किसके लिए? खुद अपने। धर्मोपदेश की सबसे बड़ी प्रक्रिया मैं इसको यही मानता हूँ, अपने को पढ़ना, अपने से पूछना कि क्यों ऐसे हो, और बार बार इस बात का ध्यान रखना कि मैं ऐसा हूँ, मेरा स्वभाव ये है और मेरी जो स्थिति है वो वैभाविक है, और बार बार इस बात को स्मरण में रखना आमना है, और फिर अपने ही कान पकड़ के अपने आप को उपदेश देना कि करते क्यों हैं ऐसा। वो तो बहुत समझदार, लोगों के सामने तो बड़े समझदार दिखते हो लेकिन करते तो ऐसा हो, शाम को अकेले में अपना कान पकड़ के अपने को समझाना, ये धर्मोपदेश ही तो रोज कर सकते हैं। ये स्वाध्याय तो बड़ा आसान स्वाध्याय शास्त्र के माध्यम से, ये शास्त्र स्वाध्याय, संयम तप और त्याग, ये सारी चीज़ें बहुत आसान सी हैं। संयम का सीधा अर्थ इन्होंने दिया है आत्मनियंत्रण, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। आत्मनियंत्रण में और भी चीज़ें आ जाएंगी, हम अपनी विषयों की आकांक्षा को भी कम करेंगे, ये भी आत्मनियंत्रण है। हम अपने मन की आकांक्षाओं को भी कम करेंगे, ये भी आत्मनियंत्रण है। फिर कषायों पर हम नियंत्रण करेंगे, अपने पास जो सामग्री रख रखी परिग्रह उसका भी नियंत्रण करेंगे, ये सब आत्मनियंत्रण में शामिल है, ये सब संयम में। लिमिटेशन भर करना, छोड़ना नहीं पूरा, लिमिटेशन करेंगे, एक दिन के लिए किया है, एक घंटे के लिए किया है, एक सेकंड के लिए किया, हमने कहा एक सेकंड के लिए लिमिटेशन किया, एक क्षण के लिए लिमिटेशन किया है तो वो आप संयमित होगा। और अगर पूरी तरह से त्याग कर दिया, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि आज तो जो है 2 चम्मच शक्कर खाऊंगा, शक्कर तो खाऊंगा लेकिन 2 चम्मच खाऊंगा, फिर एक दिन ऐसा आया कि नहीं आज शक्कर नहीं खाऊंगा, वो हो गया तब। पहले दिन आपने 2 चम्मच खाई थी, शक्कर छोड़ नहीं पाए थे, पर आपने नियंत्रण किया था, वो हो गया आपका संयम। और अगले दिन आप तब कर लिया, आपने रस परित्याग कर दिया, आज तो शक्कर खानी नहीं है, कल 2 चम्मच भी चल गया था, आज बिना उसके भी चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तप हो गया, संयम तप और त्याग, उसी के साथ त्याग घटित हो गया कि आज जो है इस चीज़ का बड़ा त्याग। और वो चीज़ अगर बढ़िया हो दूसरे के काम आ जाए, आप आश्चर्य करेंगे, जैसे बहुत थोड़ा छोटा सा उदाहरण है, बुंदेलखंड में कब अपना वो दे रहा हूँ कि जैसे शुरू शुरू में सब्जियाँ आती हैं, मटर फली आया करती थी तो बहुत महंगी आती थी शुरू शुरू में, अब महंगी आई है तो एक लिमिट में आएगी, अपने बजट के हिसाब से आएगी घर में मटर फली, अब आई है 4 मेंबर खाने वाले, देखना और मटर फली आई है और मैं ज़्यादा खा सकता हूँ क्योंकि मैं बड़ा हूँ, घर का मेंबर हूँ, मेरे लिए ज़्यादा परोसी जाएगी और जो आखिरी जिसने बनाई है शायद उसके मैं बचे भी नहीं। और हम क्या कर सकते हैं, हम आत्मनियंत्रण कर सकते हैं, हम संयम त्याग कर सकते हैं। आज हमारा जो है ऐसी चीज़ का त्याग जिससे दूसरे का लाभ हो रहा, हमने आज मटर फली नहीं थोड़ी सी बनिया, हमको तिरुचिकर नहीं लग रही, ऐसा भी कह सकते हैं, उनको बस इतने बस अब नहीं देंगे, वो दूसरी ये वाली दे दो, वो ज़्यादा है वो दे रहे हैं, और ये कमली ताकि उसको बच गई, हमने साथ में त्याग भी किया है, दूसरे के निमित्त त्याग किया, अपने लिए भी त्याग घटित हुआ, दूसरे के लिए भी त्याग घटित हुआ। हमारे पास जो जो सामग्री है हम अपने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सेव कर सकते हैं, उस सामग्री को इस तरह हम त्याग कर सकते हैं, तो ये बहुत आसान संयम तप और त्याग आसानी से किया जा सकती है। इतना जो है मेरे ख्याल से एक फैमिली के लिए पर्याप्त है। मैंने बनाई तो नहीं है लेकिन बनी बनाई देखी है लोगों की हाँ, गौर से देखता था मैं और सोचता था कि अगर ऐसा करते तो ज़्यादा बेटर।
बहुत प्रैक्टिकल है,
रोज बनना के जीवन की चीज़ है, और ये माने अपन रोज ऐसा करते हैं उसमें थोड़ा समझदारी हो जाए तो वो ही धर्म हो गया, वैसे तो करते ही। वैसे तो देव गुरु शास्त्र तीनों के लिए तीन बार करें, पर देव के लिए स्पेशली, फिर बाकी देखे एक प्रणाम। इच्छामी बंदामी ये शब्द जो है हमने ग्रेडेशन के हिसाब से दिए हैं, नमोस्तु शब्द से टिपिकल शब्द है, अपन कहते ना ये दूर है इसे नमोस्तु, अपन इतने बड़े नहीं बन सकते हैं, तो क्या कहते हैं हम महाराज जी हैं, इतने बड़े नहीं बन सकते नमोस्तु इतने बड़े नहीं, एलक जी के पास में इच्छामी इच्छा करता हूँ, आपकी जैसा तो बन ही सकता, इच्छा भी कर रहा हूँ, प्रणाम भी कर रहा हूँ और भावना भी भा रहा हूँ, इच्छा भी आपकी जैसा इतना तो कर सकते हैं इजीली कर, तो उनके प्रणाम भी हो गया और उनके लिए हमने वैसी भावना भी खा दी। बंदामी अब दोनों के बीच की स्थिति है, माता जी मुनि महाराज जी से छोटी हैं, ये लगी छुटलग जी से बड़ी हैं, क्या करें उनके लिए, आपकी वंदना कर नमोस्तु जैसा कैडर देना है उनको, लेकिन एक दूसरा शब्द इस्तेमाल, इस तरह हमने शब्द इस्तेमाल किया जैसे अपन अपने मित्रों से हेलो, ये उनका उनका रिस्पेक्ट है, अपने फादर से प्रणाम या चरण स्पर्श, क्या करें ब्रह्मचारी से जय जिनेन्द्र दर्शन की शुद्धि, जय जिनेन्द्र, या सातवीं से नौवीं दसवीं और ग्यारहवीं प्रतिमा वाले हैं, दसवीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचारी उनसे इच्छा करें, दसवीं प्रतिमा वाले ब्रह्मचारी होंगे तो इच्छा करेंगे, हाँ दसवीं ग्यारहवीं प्रतिमा वाले से इच्छा करें, और सातवीं आठवीं नौवीं प्रतिमा वाले से जो है जय जिनेन्द्र कहेंगे या दर्शन विशुद्धि, वर्णी की दर्शन विशुद्धि का दर्शन विशुद्धि मतलब हमारे सच्चे देव गुरु शास्त्र पर आपकी जैसी श्रद्धा है सो मेरी आपकी भी दृढ़ हो, मेरी भी दर्शन विशुद्धि आपको भी प्राप्त हो, सम्यक दर्शन मुझे भी प्राप्त हो, सम्यक आती नहीं दर्शन विशुद्धि, बहुत कम लोग वर्णी जी लिखा कर देते दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि सोलह कारण भावना में से एक भावना है, दर्शन विशुद्धि पहली भावना है सोलह कारण, आपस में डिस्कशन करने लगे, मैं खत्म कर रहा हूँ दो मिनट।
एलक जी से एक गलती से किसी प्रकार से त्रुटि को नमोस्तु शब्द के तहत उसकी उसका कुछ गलत हो माना जाएगा,
वस्त्र सहित के लिए नमोस्तु शब्द का उचित रूप नहीं, जो वस्त्र सहित है उसके लिए नमोस्तु नमोस्तु सीधा सा नमस्ते नमस्कार, लेकिन नमोस्तु शब्द जो है नमस्कार और नमस्ते के जैसा ही होते हुए भी सबसे ऊपर का, कहीं किसी धर्म में किसी को प्रणाम करने के लिए नमोस्तु नहीं कहा है, लेकिन पंच परमेश्वर को नमोस्तु नमस्ते आया है नमस्कार आया है, लेकिन नमोस्तु शब्द जो है वो टिपिकल है, पंच परमेश्वर के अलावा किसी को उपयोग में नहीं। अब जो क्वेश्चन इसमें उठे वो अब कल से जो है तीर्थंकर वगैरह के बारे में अभी और लिखना है क्या बाकी, अच्छा इन सबको लिखेंगे अभी तो कल आधा ऐसा कर लेंगे कि आधे में ये जल्दी से लिख लेंगे 15-20 मिनट में
देखो
इसके क्वेश्चंस काफी अच्छी बात है
ठीक है
या जैसा
नहीं नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं
आपको हमें तो पढ़ना है नहीं आपके पास सैटरडे संडे पर है दो दिन है और आप हिसाब लगा लीजिएगा कि मेरे पास कितना समय है उतने में आपको जितना बताऊंगा सैटरडे संडे को उतना बता अब डेढ़ महीने अपने पास और उसमें से भी जो है एक फंक्शन होगा सैटरडे संडे को दो फंक्शन होंगे सैटरडे संडे वो अपना निकल जाएंगे चार तो अपने सैटरडे संडे निकल जाएंगे और बाकी बचे कितने तो मेरे ख्याल से चार पांच और बचे मेरे पास शलाका पुरुष भी अपने को पढ़ना है 63 शलाका पुरुष और 169 महापुरुष इनके बारे में अपनी जानकारी होना चाहिए और दूसरा हम कहाँ से शुरू हुए ये इतिहास थोड़ा सा जैन धर्म का ये भी अपने को ये जरूर दर्ज करें और कुछ ग्रंथों की जानकारी मैं सोचता हूँ कुछ ग्रंथों की जानकारी कि ये ग्रंथ इस तरह क्रम से हम पढ़ें एक दिन ये भी अपन डिस्कशन और एक दिन अपन पूजा के बारे में डिस्कशन करें कि पूजा के अर्थ क्या है पूजा के अर्थ तो वैसे अपन जनरल डेज में भी कर सकते हैं पर पूजा के बारे में एक आधे घंटे पूरी प्रक्रिया अपन समझ लें फिर संस्कृत की पूजा का अर्थ तो वो कभी भी समझा दूंगा बाकी दिनों में भी समझा सकते हैं कोई दिक्कत ठीक है
Oh.